शारुल जी, SBS रेडियो के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
नमस्ते अनीता जी, कैसे हैं आप?
बिल्कुल अच्छी हूँ। आप बताएं कि मेलबर्न में आके आपको लग कैसा रहा है?
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिंगापुर में ही हूँ, बिकॉज यू नो इंडियंस भी हैं और वियतनामीज भी हैं और वाइट पीपल भी हैं और मेल्टिंग पॉट जैसा हो गया है। मेल्टिंग पॉट पे आप हिंदी को क्या कहेंगे? हिंदी में मेल्टिंग पॉट, उबलता हुआ पतीला, आई डोंट नो,
उबलता हुआ पतीला ही कह ले, मतलब वो पतीला जिसमें हर रंग के हीरे जवाहरात हैं और पिघलकर वो सब जैसे एक ही रंग के बन गए हैं।
डेफिनेटली, तो बहुत ही रंगीन, आपकी भाषा कितनी रंगीन है, इट्स सो कलरफुल। एक्चुअली मेरी मम्मी जो है हिंदी टीचर हैं, तो वो ये इंटरव्यू जरूर सुनेंगी, और अगर मेरी हिंदी में थोड़ी सी भी गलती हुई तो मुझे बहुत पड़ेगी,
और साथ में अगर हमारे से कुछ गलती होगी तो आप हमें डांटेंगे। शारुल जी,
हाँ जी,
मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टैंड अप कॉमेडी में महिलाएं नहीं है, लेकिन
कह सकते हैं
कि मेल डोमिनेटेड ये एक मंच है।
हाँ जी,
तो आसान था?
आसान तो नहीं था, और आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ इतनी महिलाएं नहीं इस प्रोफेशन को ज्वाइन करती हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो बहुत बार हमारे जो माता पिता होते हैं हमें कहते हैं कि आप टीचर बन जाएं, या आप ऐसा कोई प्रोफेशन लें जिसमें बहुत बहुत डिग्निफाइड प्रोफेशन हो, और उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, आपके दो बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है, अपने हस्बैंड का ध्यान है, और एक पाथ जो है वो फॉलो करना है। और एशियन औरतें भी आप देखेंगी जब वो हंसती भी हैं तो अपना जो है मुंह जैसे कवर करके हंसती हैं
जी,
क्योंकि हमारी कल्चर में ही देवियां, इतनी सारी देवियां, वो इतनी सुंदर हैं, खड़ी हुई हैं, जो उनकी जो मूर्त है, सो नेचुरल नहीं है हमारे लिए। मगर बट आई थिंक कि ये वक्त आ चुका है कि जो हमारी जो महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं हैं या एशियन महिलाएं हैं, आगे बढ़ के अपना जो पर्सपेक्टिव है आगे ला के बात करें। और इंडिया में दो तीन बहुत ऐसी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन आ गई हैं, जैसे कि अदिति मित्तल और नीति पाल्टा और अन्नू मेनन और राधिका वास, और ये ऐसी जो महिलाएं जो अपना पर्सपेक्टिव जोक्स में बताती हैं
जी,
और अपने लिए बहुत अच्छा कर रही हैं।
तो लिखना आसान होता है या स्टेज पे खड़े होके उसी बात को कहना?
मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा एक्टिंग बैकग्राउंड रह चुका है तो स्टेज पे जाना या बात करना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट शोज एमसी करती हूँ या वेडिंग एमसीज करती हूँ। पर लिखना जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप लिखेंगे पहले जोक, तो फिर उसके बाद स्टेज पे जाएंगे, फिर ट्राई करेंगे जोक, फिर कौन सा उस जोक का कौन सा जो है पार्ट वर्क करा वो आप रखेंगे, जो नहीं करा वो आपको फेंकना पड़ेगा। और जब तक वो 6 महीने के बाद रिफाइन होता है और आप स्टेज पे लाते हैं तभी उसकी पूरी मैच्योरिटी होती है। कभी कभी उसके बाद और भी आप लिख सकते हैं उसी टॉपिक पे। तो लिखना जो है एक प्रोसेस होता है, अपने आप को पहले बिठा कर, या और जैसे हम सड़कों पर भी घूमते हैं अपनी आंखें खुली रख कर चलना पड़ता है कि इस बात में क्या हमें अफेक्ट करता है, क्यों हम लोगों से ये बात करना चाहते हैं
जी।
जैसे अभी मैंने एक जो परफॉर्मेंस मैं कर रही हूँ कॉमेडी जोन एशिया की, उसमें मैं एक शादियों की बात करती हूँ, जैसे कि जैसे अभी मेरी शादी हुई है हाल ही में, और मेरी मम्मी कह रहे थे कि उनको बहुत छोटी शादी करनी है, पर उन्होंने 2000 लोगों को बुलाया।
ये आप अपनी शादी की बात बता रही हैं?
हाँ जी,
ये सच है?
हाँ, तकरीबन सच ही है कि अच्छा, बोला तो 2000 लोगों को।
तो पहले तो मैं आपको मुबारक दे दूं आपकी शादी पर।
अच्छा, पता नहीं शादी को हम बहुत वो देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं शादी को, पर आई थिंक कि जब लोग मुझे आके कंग्रेचुलेट कर रहे थे, मैंने बोला अभी पूरी हुई नहीं है,
मतलब
कि शादी तो बस अभी सेरेमनी हुई है, बट उसको निभाने का इतना लंबा जो अरसा है, अगर वो हम 10 साल भी पार कर लें आज की जनरेशन तो वो काफी है।
तो इस बात की तो मुबारक दी जा सकती है ना कि एक रास्ते पर आप चल निकली हैं।
हाँ हाँ, आप इस बात की मुबारक दे सकते हैं कि बहुत पैसा खर्च हुआ हमारा और मुझे बहुत सोना और हीरा मिला, क्योंकि सिंधी से शादी हुई है।
अब देखिए, मंजिलें तो हरेक के लिए अलग अलग होती हैं। कोई चाहते हैं कि हम 5 साल बिता ले,
हाँ जी,
बहुत है,
हाँ जी,
और कोई चाहते हैं कि हम 50 साल तक साथ रहें,
हाँ जी।
तो वो एक एक दिन, एक एक पल जो है,
हाँ जी,
वो मुबारक वाला तो है ही। देखिए, मुबारक तो आप वापस लौटा नहीं सकती।
अच्छा, तो ठीक है, मैं आपसे ले लेती हूँ जी। और जी, बस यही है, दुआ करते हैं कि जिंदगी पर चले, नहीं तो कोई और मिल जाए।
तो यानी आपकी जो शादी हुई है वो आपके लिए एक सब्जेक्ट भी बन गया?
हाँ, बन चुका है।
तो कितना मुश्किल लगता है कि अपने आप की, अपने ही किसी पहलू पर तंज करना और लोगों को हंसाना?
मुश्किल तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि अब लोग समझ पाते हैं मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन ही हैं।
तो सोने पे सुहागा वाली बात है।
पहले तो जब लड़ाइयां होती हैं कभी कभी हम ऐसी बात कह जाते हैं जो हम स्टेज पे यूज कर सकते हैं, फिर हम उसके बाद लड़ते हैं कि कौन यूज करेगा,
अच्छा
टॉपिक्स कौन ये जोक लेगा। और यू नो वो उनका प्रोसेस और मेरा प्रोसेस एकदम सेम ही रहता है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसलिए अपनी लाइफ को शेयर भी कर सकते हैं। अगर मेरी शादी किसी आईटी वाले शख्स से हो जो आईटी में काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं, शायद वो नहीं कंफर्टेबल होते कि मैं स्टेज पे जाकर उनकी फैमिली की बात करूं या अपनी मदर इन लॉ की बात करूं, पर यहाँ पे मैं मदर इन लॉ जोक्स नहीं करती हूँ।
खासी गलत फहमियों का शिकार हुआ जा सकता है। तो कॉमेडी और सरकाज्म,
हाँ जी,
उसमें कहाँ पर एक लाइन लगाती हैं और कहाँ पर ऐसा डर होता है कि कहीं बात सीमा से बाहर ना चली जाए? तो बहुत ध्यान रखना होता है कि आप किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचाएं, उसका आप ध्यान कैसे रखती हैं?
ऐसा है कि हम जो भारतीय लोग हैं हम नेचुरली बहुत सेंसिटिव लोग हैं।
हाँ।
तो हम किसी और पे हंस लेंगे पर जब अपनी बात आएगी तो हम नहीं हंस पाएंगे। पर हम इस बात की, अब मैंने इस बात की चिंता ही करनी छोड़ दी है, क्योंकि अगर आप यही सोचते रहोगे कि दूसरों को क्या दुख, यू नो उनको क्या बुरा लगेगा, तो आप अपनी कॉमेडी कर ही नहीं पाओगे। और हमारी दुनिया में इतना कुछ हो रहा है आजकल जिसके बारे में बात करना चाहिए
जी।
और जैसे जो दिल्ली में जो रेप केसेस हुए उस पे कभी कभी ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, आप सोचते हैं कि क्या आप उस पे जोक कर सकते हैं, या पर आपको करना पड़ता है
और तभी शायद लोगों का ध्यान भी जाता है।
हाँ जी, अगर आप किसी चीज के बारे में हंस सकते हैं यानी कि आप उसके बारे में सोच भी सकते हैं और घर जाके आप ये भी कर सकते हैं कि वो जो कह रही थी वो सच ही कह रही थी। और कॉमेडी तो बेस्ड ही इंसल्ट्स पे होती है, जैसे हर जोक के ही नीचे हम किसी का तो किसी चीज का मजाक उड़ा रहे हैं जहाँ पे बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक छुपा है, चाहे वो डिफरेंट हमारा कास्ट सिस्टम के बारे में हो, जैसे कोई पंजाबियों के बारे में, कभी सिंधियों के बारे में
जी।
उसमें भी हम कुछ बोल रहे हैं जो जिसमें कोई एक मैसेज है, यू नो लोग रियलाइज करें ना रियलाइज करें वो तो है ही। पर हाँ आजकल बहुत लोग सेंसिटिव हो गए हैं जोक्स को लेकर। एक वाक्य था, आपको पता ही होगा, नाम नहीं लूंगी, पर एक कॉमेडियन था जिन्होंने एक एक गुरुजी पे एक मजाक उड़ाया था और उनको जेल हो गई। और सारे कॉमेडी वर्ल्ड में यही था कि आप कैसे किसी कॉमेडियन को जो सिर्फ बात कर रहे हैं स्टेज पे, उस सिर्फ जो वो कह रहे हैं उसकी वजह से आप कैसे जेल कर सकते हैं, जबकि आपकी सरकार में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी बुरी चीजें करी हैं और वो कभी जेल नहीं गए। तो मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं बस एक व्हीकल हैं जिससे हम अपना मैसेज लोगों को पहुंचा सकते हैं, रियलाइज करवा सकते हैं कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है। बाकी लोग तो चेंज तो अपने आप ही होगा। और हम पब्लिक स्पीकर्स हैं, हम सब सिर्फ लोगों को हंसाना चाहते हैं और रियलाइजेशन उनके ऊपर है। जो हास्य कलाकार होते थे जो है सुरेंद्र शर्मा
जी,
वो भी यही करते हैं। पर उनका पैन फेस जो तरीका होता है बहुत बहुत डिफरेंट होता है और अब तो बहुत सीजन्ड है।
हाँ।
पर बहुत मजा आता है क्योंकि उसमें एक मैसेज होता है डीप। सेम चीज स्टैंड अप कॉमेडी वो ही है जो वो कर रहे हैं सालों से, बस ये डिफरेंस है कि अब हमारा जो प्रोफेशन है वो बहुत ग्लैमराइज्ड हो गया है। एक माइक के साथ हमारी एक अच्छी फोटो ली जाती है और वो इधर उधर हम बहुत ही सुंदर लग के
जी,
कई कई बार तो लोग मेरे शो पे आते हैं कहते हैं आप यही हैं जो पोस्टर में।
अच्छा जी हाँ बिल्कुल, मैं आपसे पूछ सकती हूँ ये बात कि आप सच में यही हैं?
यही हूँ, यू नो थोड़ा सा शादी के बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गई हूँ। बट नहीं, आई मीन मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं मेरे हस्बैंड एंड मैं उनका बहुत अच्छा ध्यान रखती हूँ, तो हम दोनों ही काफी
स्टेज पे दोनों ने खड़े होके काम करना है।
हाँ जी, और मैं कई बार कहती हूँ कि आप कॉमेडियन हैं, अगर हमारा डिवोर्स हो गया है तो आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी ना दें, आधे आधे जोक्स दे दें, उनसे ही मैं पैसे बना लूंगी,
क्योंकि वही तो मलकियत है असली। बहुत अच्छा लगा शारुल जी आपके साथ बात करके, और एक बिल्कुल सी जैसे कहते हैं ना काम से बिल्कुल भूल ही गए हम कि हम क्या कर रहे थे, और आपने बस हमें ताजगी दे दी है आगे के काम करने के लिए।
धन्यवाद अनीता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप बहुत वाइब्रेंट हैं और आप बहुत अच्छी एनर्जी एक्सूट करती हैं, तो आई फील वेरी वाइब्रेंट फॉर द डे।
थैंक यू।